بکر نے بتایا کہ نل اور نیل نام کے جو آپ کے سینک ہیں ان کے گردیو دوارا ان کو ایک آشیرواد ملا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے پتھر بھی تیر جاتے ہیں، آپ ان کا سہیوگ پراپت کیجیے، آپ کا کام بھی بن جائے گا اور میری مریادا بھی بھنگ نہ ہوگی، وہ تو سمر سکتی سے ان کو آدیش ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب بھگوان شری رام نے نل اور نیل کو بلا کے پوچھا بھی کیوں آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی پاور ہے؟ اکھا جی، اب دیکھو یہاں بجلی گرتی ہے، ایسے یہ بھگتی خراب نہیں ہوا، اگر انسان کو ایم آئے بلا رہتا نہیں، کیا ہوا؟ اب نل اور نیل نے سوچا کہ آج سے ہمارے سامنے انگد بھی فیل، انمان بھی فیل اور جاموان بھی فیل، آج تمہاری پربھوتا پوری ہوگی اور ہمارے ہاتھ میں سکتی ہے، فٹافٹ پتھر رکھ دیں گے، کیا بات کی۔ اور جس دن آپ میں پربھوتا آ جائے گی پربھو دور ہو جائے گا۔ اب شری رام نے کہا بھی ایک پریکشن کر کے دکھاؤ، وہ پتھر رکھ کے دکھا دو تاکہ میرا من سنتوشٹ ہوئے۔ دونوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا اور ایسے ہی جا کر کے اور دونوں نے پتھر رکھ دیے، دونوں ڈوب گئے۔ ایک ایک پھر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی ڈوب گئے۔ تب بھگوان شری رام اس وپر روپ میں پرگٹ سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، مانو کہنا چاہتے ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی آتما شکتی نہیں ہے، مجھے بہکانا چاہ رہے، بہکا رہے تھے۔ اس سے پہلے ہی سمندر نے کہا کہ نل اور نیلا تم نے کمال غلط کر دیا کام بھائی، آج تم نے غلطی کی، اپنے پوجے گرودیو کو یاد نہیں کیا، نادانو یاد کرو ایک پرم کو۔ تب ان کو بھی اپنی غلطی کا آبھاس ہوا اور یاد کیا اس پرم پتا کو۔ اسی سمے کیا دیکھا کہ سامنے وہ پرمیشور آدھا کلومیٹر کی دوری پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نل اور نیل کی درشٹی پڑی، کہنے لگے گرودیو تو وہ آگے ہیں، اوہ یہ تو انتریامی ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں، دیکھو وہ پہنچ گئے ہیں، اب کوئی چنتا نہیں، یہ سب کچھ کر دیں گے۔ اتنے میں سب کی درشٹی گئی تو کبیر او پرمیشور منیندر جی ارتھات پورن برہم کبیر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ بھگوان شری رام نے کہا کہ ہے رسیور، آج آپ کے شیشوں میں وہ بھکتی نہیں رہی، سکتی نہیں رہی، ان کے ہاتھ سے آج پتھر نہیں تیر رہے۔ کبیر صاحب نے کہا، منیندر جی نے کہا کہ اب تیریں گے بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مہان غلطی کر دی، آج یہ پربھوت آگے بھوکھے ہو گئے۔ آج انہوں نے سوچا کہ تم کیوں گرودیو کو یاد کرو، کہیں یہ نہ سوچیں تو کسی اور سے پرارتھنا کر رہے تھے، تم شکتی آئی ان میں، آج سے ان کے ہاتھ سے اکشین ہوگی، شکتی کبھی نہیں آئے گی واپس۔ پرماتما کہتے ہیں کبیر صاحب کے جیسے ماتا گرب کو رکھ یتن بنا اور ٹھیس لگے تھے اکشین ہوئے تری، ایسے بگتی جا جیسے کسی بہن کو شادی کی کافی سمے ورشوں اپرانت گرب رہا ہو، پھر وہ کتنی ساودھان رہتی ہے اس بچے کو سفل کرنے کے لیے، اونچے نیچے میں پیر نہ رکھا جا بھگوان، بڑا ساودھان ہو کر چلتی ہے، راتری کے سمے کروٹ لیتی دفعہ بھی تین بار سوچتی ہے پرماتما کہ بچے پر دباؤ نہ آ جا، میرا گرب خراب نہ ہو، ایسے ہم نے بھکتی کو ایسے رکھنا چاہیے، لیکن ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اہم ہمیں مل جائے کہیں سے اور اسی میں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ جیسے ماتا گرب کو رکھ یتن بنا اور بھائی ٹھیس لگے تو اکشین ہو جاتی، ایسے بھکتی جا، وہی کام نل نیل نے کر دیا، وہ بھکتی وہ گرب اکشین کر دیا بھکتی کا۔ تب شری رام نے کہا کہ پربھو، اے رسیور، میرے اوپر بہت آپتی آئی ہے، آپ جب آشیرواد دے سکتے ہو تو میرا کلیان آپ بھی کر سکتے ہو، آپ تو پرم شکتی ہو، اور میرا کوئی پربند کرو، یہ پل بن جاوے۔ کبیر صاحب کہتے ہیں یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے چاروں طرف ایک ریکھا لگا دی کافی لمبے چوڑے کھیتر میں، کہنے لگے کہ اس کے بیچ بیچ کی، اس ریکھا کے بیچ بیچ کے پہاڑ پتھر اٹھا لو، سارے تیر جائیں گے۔ اب پتھر وہاں سے اٹھا کر لائے گئے اور رکھے تو بالکل تیر رہے ہیں، سب نے خوشی منائی۔ اب کیا کہا کرتے یہ، پھر وہ پل تیار ہوا، یہ کیا کہا کرتے نادان سنت، بتاتے تھے کہ بھگوان شری رام نے پل بنا دیا، پھر کہتے تھے ہنومان نے اس کے اوپر رام کا نام لکھ دیا، پتھر تیر گئے۔ کبھی کہتے تھے کہ نل اور نیل کے ہاتھوں میں سکتی تھی، انہوں نے وہ پتھر ترا دیے۔ اب ان کا جو ہے ایسے جوڑ بگاڑ کا گیان تھا، صحیح گیان نہیں تھا، کیسا تھا کہ بھگوان شری ہنومان جی भगवान श्री राम के पुजारी नहीं थे। पहले तो सतयुग में केवल एक ही साधना थी, वेदों अनुसार। हाँ, राम इसलिए कहते थे, जैसे उपदेश जिन्होंने दिया था वो ओम नाम का जाप कर जपते थे, सभी के गुरु हुआ करते थे। और राम राम इसलिए कहा करते थे, भाई राम भगवान का वो मंत्र जो मिला है तुम्हें ओम नाम का, वो सीधा नहीं कह सकते उपदेश एक दूसरे को, नहीं तो उसका वो खंड हो जाओ, क्योंकि उसको उससे वो आदेश, उसका आदेश हो गया कि ओम नाम जप ले भाई, ओम नाम जप ले। अगर ऐसा कह दिया तो उसकी तरफ से आदेश हो गया, वो गुरु हो गया उस दूसरे का, उनका आपस में उनका फिर कैंसिल हो जाती है और भक्ति खत्म होती है। इसलिए गुरु लोग बताया करते थे, बेटा ओम नाम का जाप काम करते करते करना है, विशेष कसक के साथ करना है, दिन रात करना है, अपना परम कर्तव्य समझकर चलते फिरते उसको नाम का जाप करते रहना होगा, चाहे वो ब्रह्म साधना करो, चाहे परब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, वो मंत्र के जाप से ही होगी। ऐसे परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी उनकी प्यारी आत्मा जब कबीर साहब का साक्षात्कार होने के उपरांत कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागे। तो ऐसे उपदेशी को संकेत दिया जाता है कि भाई एक दूसरे ने याद दिला दियो कि संसारिक समस्या में फंस गई, राम उस नाम ने ना भूल जाए जो ओम नाम का जाप करते हैं। लेकिन सीधा नहीं कह सकते ओम नाम जाप कर ले, क्योंकि आखिर राम राम भाई राम राम, तो वो दूसरा कहेगा राम 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 राम। क्या संकेत होता था कि वो ये सोचा करते कि एक दूसरे को कह रहे हैं ना तो याद दिला रहे हैं कि मंत्र मत भूल जाना, याद रखना प्रभु को। तो दूसरा कहता या तो कहता मुझे याद है, ये नहीं कहता अकराम राम 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 जी राम राम, हाँ याद है याद है, यानी संकेत था क्या, हाँ या तो याद है कर रहा हूँ और नहीं तो अब शुरू कर देता हूँ भूल जाएगी थी, यानी उन एक दूसरे को याद दिलाने के लिए संकेतिक उसको राम राम कहा करते थे, लेकिन जाप राम का नहीं है। जैसे हम सत्साय बोलते हैं, सत्साय हमारा मंत्र नहीं है, इसका प्रतीक है कि हम अपने उपदेशी को बोलते हैं सत्साय कि भाई परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत, वही सच्चा सत माने अविनाशी सत्यनारायण भगवान, और उसी की पूजा उसके ध्यान में लीन रहना वही सत्य है, बाकी सब कोई भगवान किसी की पूजा में लीन मत हो जाना, कहीं काम बिगाड़ ले, और अपने नाम को याद रखना। दूसरा भी कहता सत साहेब जी सत साहेब, हाँ मंत्र हमें याद है, हम करते रहते हैं, और दूसरे की पूजा कर ही नहीं सकते, ऐसा मन में संकेत आता है। अब कुछ ऐसे कबीर पंथ के मानने वाले कहते हैं सत साहेब नाम जो कहो सत साहेब, कोई कहे सतनाम कोई ना जाने के जड़े डुआ में, तो कहने का भाव ये है कि राम नाम नहीं था वो जाप हनुमान जी का, वो तो राम नाम जैसे वहां से पत्थर उठाया और राम लिख लेते थे, राम के लिख लू याद रह जा कि मुझे वहां तक नाम जाप करना ओम का जो मंत्र दे रखा था ऋषि गुरुदेव ने। भगवान श्री राम जब मिले थे सुग्रीव को, जब वो पहाड़ पर बैठे थे हनुमान और सुग्रीव, श्री राम जब पहुंचे तो उससे पहले तो हनुमान जी राम राम जप रहे थे, वो राम यानी वो नाम जपा करते थे ओम नाम, और राम राम ही बोला था जाकर के उनको, तो श्री राम को तो जानते भी ना थे, इस राम के पुजारी हनुमान जी नहीं थे। तो कहने का भाव है कि वो अपनी दिनचर्या रखते थे, याद राम का नाम लिखा वहां से लेकर किलोमीटर सारा पड़ा था उठाकर चल पड़ते थे, फिर क्योंकि आगे डिस्टेंस बढ़ता जाता था वो आगे ले जाते थे पहाड़ उसके ऊपर का, तो वहां तक उस याद कर लेते थे, मंत्र जाप करते जाते थे, ऐसे वो राम लिख देते थे। और नल नील एक कारीगर थे भी थे, उसके वो शिल्पकार भी थे, उन्होंने तराश पत्थरों का सेट कराया करते, लेकिन उस परम पिता की शक्ति थे ये पत्थर तेरे थे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब कृपा थे। रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार, रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार, जास तेरे खाल की अपार सिंधु पे सला चराने वाले, जास तेरे खाल की अपार सिंधु पे सला चराने वाले, धन धन सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की ने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले। अब کیا ہوتا ہے پل بن گیا. اب 12 برس ہو گئے یدھ کرتے شری رام چندر پر راون نہیں مریا. اور جب کیونکہ یہ سبھی آتما اس پرم پتا کبیر پرمیشور کی ہیں, چاہے آج کوئی برہما بنا چاہے وشنو چاہے شیو کوئی بھی ہے چاہے رنگ یا راجا, اسی کو اپنے بچوں کا دکھ یاد آتا ہے. اب جب یہ اپنی ہمت ہار جاتا پرانی تو پرم پتا کو یاد کرتے ہیں, یہ کوئی سمرتھ سکتی ہے میری مدد کرو, میں تھک دیا مالک. تب وہ پرمیشور آئے, کون وہ پورن برہم گپت روپ میں. اور پہلے وبھیشن نے یہ بھی بتا دیا تھا شری رام کو کہ راون کی ناپی میں امرت ہے, اور صرف پٹک لیا تھا شری رام چندر جی نے ناپی میں, اس میں تیر نہیں لگنے دیا شری رام چندر کا راون نے. وہ تو اس پرماتما نے آ کے پھر اس کا کام کریا. اب یہ باتیں بہت پی ایچ ڈی کی, آگے بھی تو آپ کو یہ سمجھانا ہے کیا ہوا کہ راون کا ود ہوا. اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایک ناگ پاس نام کا ہتھیار چھوڑ دیا, ایک پرکش پاتر چھوڑ دیا, اور جس سے کیا ہوا نہ جانے کتنے ناگ پرگٹ ہو گئے, اور بھگوان شری رام سمیت ایسے ہاتھ نیچے لگ کر ایسے ہاتھ تھے, اور ان ناگوں نے باندھ دیا کتی ایسے جکڑ دیے, ساری سینا ہنومان سمیت انگد اور جاموان سمیت ایسے بندے کھڑے, اور شری رام اور لکشمن سمیت. اس میں کس سے یاچنا کی؟ گروڑ سے یاچنا کی, گروڑ دیا کر ہمارے پہ ہمارے بندھن کاٹ. جب گروڑ دیو نے آ کے ان ناگوں کو کھایا کاٹیا اور پھر بندھن مکت ہوئے, کون؟ شری رام چندر جی. اب پرماتما کبیر صاحب کہتے ہیں نادانوں تم رام اور شری کرشن کو پورن شکتی مان کر آشرت ہوئے ہوئے ہو, دیکھو کاٹے بندھن ویپت میں کٹھن کیو سنگرام, چینوں نر پرانیا یہ گروڑ بڑو اکرام. گوڑی آتما کچھ یہ تو سوچو, بھگوان کیسے بند کے کھڑے ہو گئے تھے, اب رام بڑا ہوا اب یہ گروڑ بڑا ہوا جس نے رام کے بھی بندھن کاٹے بند کاٹے. اور پھر کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ واسطوکتا تو ہمارے پاس رہی نہیں, کہتے شری رام نے پتھر پل پل باندھ دیا تھا, پل بنا دیا تھا, اس سے بڑی شکتی اور کیا ہوگی. انہوں نے رب پل بنایا کس نے تھا, جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نے لکھا, جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نے دیکھا. جو سب کچھ کر رہا ہے اس کا ذکر بھی نہیں, یہ اس نے کر دیا وہ اس نے کر دیا, کیونکہ وہ پرماتما مہیما کا بھوکا کوئلہ, اس مہیما پریپورن. اور وہ کہتے کرے کرا ویسائی من میں لہر اٹھا, اور دادو سے اگر جیو کا وہ آپ بغل ہو جا, وہ نہیں چاہتا اپنی مہیما, مہیما تم رکھو اپنے پاس ہی. پھر کیا بتاتے ہیں کہ اگر تم بھگوان شری رام کو پربھو اسی لیے مان رہے ہو کہ انہوں نے پل بنا دیا تھا, آپ کی بات بڑی کرتے ہیں. اگست رشی نے ان 7 سمندروں کو ایک گھوٹ میں پی لیا تھا, بتا شری رام پر تو پل بھی نہ بنے تھا, آپ کو بتاؤ تم 3 دن ہاتھ جوڑے کھڑے رہے. اب کیا بتاتے پرماتما کہ مان لیجئے بھگوان شری رام کو تم نے سمر سکتی اس لیے مان کر پوجا شروع کر دی, کیا کہ سمودر پاٹ لنکا گئے وہ سیتا کو بھرتا رے, اگست رشی نے وہ سارے پی لیے ان میں کون کرتا. اگر اسی اپما کے آدھار پر تم پربھو مان رہے ہو شری رام نے کہ پل بنا دیا سمندر کو پاٹ کے یعنی اس کے اوپر کا چلا گیا, چل آپ کی بات بڑی کرتے ہیں. پرماتما کہتے ہیں یہ بات تو تمہارے بہت دیر میں سمجھ میں آؤں گی کہانی کی تھی, پر ہم اسی بات کو مان کر چلیے کہ آپ نے اسی آدھار پر بھگوان سمرتھ مان لیے کہ سمندر پاٹ کا اوپر پل باندھ کے چلے گئے. اگست رشی نے وہ سارے پی لیے تھے, ہاتھ جوڑا پیر پکڑے جب واپس کرلا کر دیا, کہتے پھر وہ سارے کے سارے سمندر بھر گئے تھے. بتا کر ان میں کون بھگوان. اب کیا ہوتا ہے, راون کا ود ہو گیا اور وہ لنکا کس کو ملی, اس پرم پتا کے سادھک کو, اس پورن برہم کی بھکتی کو, کبیر پرماتما کی پیاری آتما وبھیشن کو. اس سچے نام کی کمائی کے آدھار پر پرماتما نے وہ لنک بھی بخشیش کر دی. اب دیکھو کیا بتاتے ہیں کبیر صاحب, کہتے ہیں کہ یہ تھی جے تجھے راج پاٹ بھی چاہیے ہمارا در لے جان, ہم بھی تیرے بنا باغ میں دے دیں گے تمہارے, اپنی طرف سے لکھ دیں گے تیرے باغ میں, اگر تم دھن بھی چاہیے راج بھی چاہیے تو وہ بھی آما کاٹ سکے اس کنٹینر اور کہ یہ بھی بس کا کوئی نہ. क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार है। और कबीर परमात्मा ने वह फिर रावण, रावण तो उसको नहीं रख सका लंका के राज को, और सिर भी काट कर चढ़ा दिया था। रावण ने, विभीषण ने कुछ नहीं चढ़ाया के सिर सौंप दिया मालिक को। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल होया यो शीसी, नितानंद इस शीश पे है आप बसे जगदीसी। गुरुदेव को सिर सौंप दिया, दाता ये शीश भी तेरा, ये शरीर भी तेरा मालिक, हमें तो कल्याण करो दाता। लेकिन उन मांगी नहीं के मुझे लंका का राज दे दो, मुझे कल्याण दो, वो भी दिया और उस प्यारी आत्मा को राज भी दिया। और मंदोदरी और विभीषण ने फिर ठाट से वहां राज किया, और कुत्ते और मौत मरा वो रावण जो तमोगुण का उपासक था। अब इन बातों को विचार करना। अब गीता जी के उस अध्याय को फिर देखिए, पंद्रहवें अध्याय के 16 और 17 श्लोक, जिसमें क्या बताया है कि तीन परमात्मा हैं, जिनमें से दो तो वो है ब्रह्म और परब्रह्म, उनके अंदर ये देखिए ये सारे ब्रह्मांडों का चित्र। तीन भगवान प्रमाणित हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ये तो क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और ये परम अक्षर पुरुष, ये तीन सती थी प्रभुओं की है, प्रभुगानों की। और ये क्षर पुरुष तो ज्योत निरंजन काल ब्रह्म है, और ये परब्रह्म ये अक्षर पुरुष है, और ये परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म ये परमात्मा कबीर साहब जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक का सारांश है कि इस ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं, ये भी और ये भी। ये पृथ्वी वाला लोक है सारा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया पृथ्वी लोक को। इस पृथ्वी लोक में दो भगवान है, एक ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इन दोनों के राज्यों, इनके दोनों के राज में यानी लोक में, इसमें जीवात्मा तो अविनाशी है दोनों के शरीर रूप में, और इनके सथुर शरीर दोनों के नाशवान है। जीवात्मा रूप में तो ये अविनाशी है, और इनमें सथुर शरीर या सूक्ष्म शरीर जितने भी हैं, चाहे वो लिंग शरीर है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, चाहे देव महादेव बने, इनके सथुर शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा दोनों में अविनाशी है। इसके लोकों से इसकी ज्यादा आयु है, इसलिए इसको भी कुछ अविनाशी कहा। जैसे एक तो मिट्टी का कप हो, चाय पीने का, चीनी का, वो तो गिरते टूट जा। क्षर पुरुष समझो ये काल और काल के भगवान के, इसके शरीर और ये देवता सारे ये खुद भी इतना अस्थाई है। और अक्षर पुरुष जैसे स्टील का कप हो, इसकी तुलना में ये अविनाशी यानी स्थाई धातु लगती है, लेकिन वास्तव में अविनाशी ये भी नहीं है स्टील का। उसका भी विनाश होगा, उसको जंग लगेगा, समय से कितना लगो विनाश होगा, इसलिए इसको कुछ अविनाशी कह दिया अक्षर पुरुष, इसलिए कहा। लेकिन कहा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो वास्तव में दोनों से भी न्यारा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य, और वही तीनों लोकों में प्रवेश कर कश्यप का धारण पोषण करता वो अविनाशी परमेश्वर है। अब देखिएगा गीता जी के प्रथम अध्याय का ना, गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण गर्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी शाखा वाला, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। अब क्या बताते परमात्मा कबीर साहब अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को आप ही ठीक ठीक बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये निरंजन हुआ की डरे, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। परमात्मा कहते हैं ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म तो तना है समझो, और उसमें से निकली एक डार ये ज्योति निर्मित क्षर पुरुष ये ब्रह्म समझो, और उसके तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ये टैनी समझो, और जड़ कौन है ये पूर्ण ब्रह्म जड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नंदन वाकी दार, तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार, और पूर्ण ब्रह्म ये मूल है ये जड़ है। अब कहां से खुराक चलती है इस पौधों को, सारी जड़ से चलेगी, यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। कोई भी अड़ा हुआ काम है ये परमात्मा करेगा और कोई नहीं कर सकता। सीधी सी बात इति सीधम, आप देखिए गीता जी के 15वें अध्याय का और ये 16 और 17 श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16। विद्वौ दो इमौ पुरुषौ लोके, इस काल इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं। कौन से में? सर्वपुरुष और परब्रह्म, परब्रह्म और परब्रह्म के लोक में ये दो भगवान हैं। पुरुषौ माने ये दो भगवान, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये नाशवान ब्रह्म है, अक्षर पुरुष अविनाशी कहा ये परब्रह्म है। और इसी प्रकार दो स्थिति प्राणियों की है, ये सब प्राणियों के जो शरीर हैं ये तो नाशवान है और ये जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। और फिर बताया वास्तव में अविनाशी परमात्मा इन दोनों भगवानों से कोई और है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के भगवान हैं, या भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था, प्रभु हैं। और सब इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों यानी जीवों के शरीर तो सथूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी, इन दोनों में ऐसा ही है। लेकिन वो तीसरे परमात्मा के वहां जाने के बाद जीवात्मा का वो शरीर भी अविनाशी और वो खुद भी अविनाशी, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब क्या बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम भगवान तो कोई और ही है इन दोनों से नारा। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबकी काम सारे, सबके प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। अब क्या देखिए, स्पष्ट हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा ही सबके काम करता है, चाहे श्री राम हो और चाहे श्री कृष्ण हो। और जब तक ये इससे संपर्क में नहीं आते तब तक तो ये इनके वही कर्म आधार को पूरा करता है। जैसे रावण भी नहीं मर पा रहा था, इस परमात्मा ने जाकर रावण का कल्याण किया। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के खेत, अरणा कुछ उधर विदारिया मैं रावण मारा खेत, खेत माने रण क्षेत्र में हमने रावण को मारा, इस राम के बस का नाम था। अब ये बातें बहुत देर में समझ में आएंगे, अभी तो आप परमात्मा कबीर साहब को भगवान मानने कोई तैयार नहीं होगी, दो चार सत्संग सुन लोगे फिर आपका समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है विचार कीजिएगा, भगवान श्री राम विजयी हुए, विभीषण को राज प्राप्त हुआ और गीता जी, सीता जी को अग्नि परीक्षा करके भगवान श्री राम घर ले आते, हजारों व्यक्तियों के सामने कि मैं तुझे जब ले चलूंगा अपने साथ तुझे अग्नि में प्रवेश करूंगा। श्री राम ने कड़ी परीक्षा ली, अगर तू नहीं जली तो निष्कलंक है और जल गई तो कलंक नहीं, तेरा काम बन जाएगा, मर जाएगी। सबके सामने भगवान सीता जी का की परीक्षा की, अग्नि में बैठा कर नहीं जली वो देवी, और सहर सीता जी को श्री रामचंद्र जी अवतार ले आए, प्रेम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री राम रात्रि के समय नगरी में घूम रहा था, एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था और कह रहा था तू कहां रही दो दिन। वो कहती है मैं अपने मायके चली गई थी, आपने मेरे साथ लड़ाई कर दी थी। कहने लगा मैं क्या जानू उल्टा तू कहां रातों बिताई है तूने, मैं ये दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं जिसने 12 वर्ष रावण की कैद में सीता रही और फिर उसके बाद अपने घर रख ली, मैं ऐसा नहीं हूं। इस बात ने सुनकर कहते भगवान राम को नफरत होगी, आके सीता को अगले दिन घर से निष्कासित कर दिया कि जाओ आप यहां से, मेरी बेइज्जती होती है। ऐ थरा गजब भैया, अपने सामने परीक्षा लेकर लाया, अग्नि परीक्षा में उसमें जली नहीं तब अपनी बुद्धि तो फेल होगी, आम आदमी के कहने से पत्नी निकाल दी। इन महापुरुषों की हम आड़ लिए हुए, इन भगवानों की हम आड़ लेकर अपनी मुक्ति चाह रहे हैं जिनकी आप सथिर बुद्धि नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि परम पिता पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने से जीव छुटकारा होगा। सीता जी गर्भवती, पेट में बालक बच्चा गर्भ में, और एक नौजवान औरत को घर से निकाल देना, बताओ भैया काय की समझदारी। कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आग लगे सी मर्यादा को, कोई बात हुई जब आपने सामने परीक्षा ले ली, फिर आम जीव के कहने से फिर तो कम न पिताजी ने निकाल दे कोई, फिर अगले दिन मां ने निकाल दे कोई, कुछ ना कुछ तो दुनिया भक्ति ही रहती है। तो ये कहानी क्या है, ये इनका जीवन, इनकी पहले ये कहानी निर्धारित होती है, ये भगवान उसमें टस से मस नहीं कर सकते, इनका बस की बात नहीं। और वो सारा रिमोट इस ज्योत निरंजन अव्यक्त भगवान निराकार के हाथ में, ये निराकार कह नहीं पर है आकार में, पर इन्होंने निराकार मान रखा है अनजानों ने, तो हम निराकार कह देते हैं, जिनको तुम निराकार कहते हो वो सबको नचाता है, इनकी बुद्धि व पर्दा घेर दी। इतना भी ना सोचा तू क्या करने जा रहा है, जवान औरत गर्भ में बच्चा, आदमी निकल कर देखो करते हैं औरत की तो कहना क्यों से, छोड़ के देखो मेरे पूरे घर में क्या क्या कैसे जीवन होगा, कहाँ रोटी खावे, कहाँ रहे, क्या क्या उसका रिकॉर्ड की जात का, तो फिर कहना है कि फिर ऋषि वाल्मीकि वहां जाकर सीता जी ने शरण लिया अपने पिता की तरह वहां रही। फिर वहां एक पुत्र और हुआ जो ऋषि जी ने अपनी कृपा से उनको किसी कारण से और एक कुश से बना दिया था। तो दो पुत्र लव और कुश नाम के एक दिन जब जवान हुए वो बच्चे और रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ दिया अपने परीक्षण करने के लिए चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ दिया और छक्के छुड़ा दिए उस रामचंद्र जी के, और सीता जी ने दर्शन नहीं दिए कि ऐसे व्यक्ति की मैं दर्शन नहीं करती जिसने इतना विरह नहीं करा मेरे ऊपर, एक गर्भवती को घर से निकाल दिया। तो कहते जमीन में समा गया सीता और भगवान राम वापस आके और सरयू नदी में छलांग लाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, आत्महत्या करी। अब इन बातों को ध्यानपूर्वक सोचना होगा हमने, हम किसी के द्वेषी नहीं, ना किसी को बड़ा छोटा बताते, ज्यों की त्यों कथा सुना दी। अब विचार करना आपका फर्ज बने, जिन भगवानों की मार्ड ले रखी है वो आप सुखी नहीं, सारा जीवन दुख में उनका एक एक सुख का सांस नहीं उनको प्राप्त हुआ, और हम उनकी उनकी भक्ति करके परमात्मा कबीर साहब कहते तुम कहां सुख पाओगे ना जानो, कुछ टाक खोलो। इस प्रकार परमात्मा ये त्रेता युग में आए और अपनी सत्कथा और बहुत से जीवों का उद्धार किया। अब यही परमेश्वर द्वापर युग में आए थे, उसमें करुणा में नाम था इन परमेश्वर का द्वापर युग में, और एक सुदर्शन सुपच नाम के, सुदर्शन नाम था उस पुण्य आत्मा का, और सुपच इसलिए कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, उसमें सुपच कहा करते थे, और उस सुपच में भी हरिजनों में भी एक बंगी जाति में उनका जन्म था, बंगी जाति जिसे वाल्मीकि कहते हैं, और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वो प्यारी आत्मा, उस पूर्ण परमात्मा करुणा में से उपदेश दिया इस तीन नाम के जाप का जो परसों आपको बताया था, और उसकी भक्ति से वो बहुत परम शक्ति युक्त हो गए। अब इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा के घर में ना कोई मजहब की आड़ ना कोई जात की, उसने तो आत्मा चाहिए तो किसी मजहब जाति में है, लेकिन वो निर्मल और सतगुरु की हर आज्ञा का पालन करने वाली होनी चाहिए। परमात्मा लाल की कीमत करते हैं, कहते हैं लाल चाहे कीचड़ में भी क्यों ना पड़ा हो उसकी कीमत कम नहीं होती, दो मांझ के साफ कर लेते हैं। ऐसे संतजन अपनी प्यारी आत्माओं को चाहे वो कितने भी अनजानपने में कितनी बुराई कर चुके हों, और जब ये अमृत रूपी सत्संग रूपी अमृत सरोवर में स्नान करवा के उनको साफ कर लेते हैं, और आत्मा वो लाल है इसकी कीमत नहीं घटती। सुदर्शन जी से ने उपदेश लिया परमेश्वर का और सत भक्ति करने लगे। आपने सुना है गीता जी में काल भगवान बोल रहा है, कहता कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे तो भक्ति कर ले मेरी, और मैंने तो युद्ध कर ले और तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, तू क्यों घबरावे। श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं करवाई, युद्ध नहीं करवाया, श्री कृष्ण में जो काल प्रवेश कर गए, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन, जैसे आपने हजरत मोहम्मद के बारे में देखा जब वे आती थी कभी तो उनके अंदर प्रवेश कर जाते थे ये काल, और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, घंटियों से बजती थी, फिर एकदम बहुत तंग हो जाते थे और फिर लिखवा देता था बोल बोल के। ऐसे ये काल इस कृष्ण में प्रवेश करके वो अव्यक्त, और ज्ञान तो दिया सही, जैसे कुरान शरीफ में ज्यों का क्यों ज्ञान तो है सही, क्यों परमात्मा और है उसका नाम कबीर है, उसने छह दिन सृष्टि थी सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ, देखो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसको कुरान शरीफ को बोलने वाला भगवान कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति को, तुम्हें संत बताओगा। ऐसे गीता जी में लिखा चौथे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में कि अर्जुन मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति को, उसको जो कोई संत मिलेगा वो तत्वदर्शी संत तेरे भाग जाग जहां कभी आ जावे, और वो फिर नैरी नैरी व्याख्या करेगा सारे ब्रह्मांडों की, फिर उसके पास जाकर सुन, पहले सत्संग सुन, सत्संग सुन के फिर भक्ति प्रारंभ कर ताकि तेरी दिशा गलत ना हो जाए। अध्याय नंबर चार का श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, ये गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है। और भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ ले भाई, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरह फुरकानी आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहा कि वो कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और हजरत मोहम्मद को वो उसका बोलने वाला खुदा जिसको वह अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि वो कबीर नाम है, और उस कबीर के लिए संघर्ष करना, दुनिया काफिर कहेंगे वो भगवान नहीं है, लेकिन तू उनकी बातों मत आना। ये ज्ञान तो देता उसके डर का सही, लेकिन पूजा अपने लेवल की करवा के उनको गुमराह कर देता प्यारी आत्माओं को। और वो ये जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7 दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, वो कबीर परमेश्वर है। बाखबर माने वो तत्वदर्शी संत से पूछ, मैं नहीं जानता उस परम पिता कबीर साहब के पाने की, पूर्ण ब्रह्म के पाने की विधि नहीं जानता। अब गीता जी के तीसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में क्या लिखा कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्ति होगी, और नहीं तो भाई इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। तो पवित्र गीता जी, अब ये अटकलें जो लाई ये काल ने गलत लगाई, और ज्ञान दे दिया सही उस परम पिता का कि वो संत कोई और है, उसकी भक्ति करेगा, उसके पास जाएगा, मेरी करेगा, मेरे पास आएगा, और इन अन्य देवताओं की पूजा मत करवाई। ये जैसे कि पवित्र कुरान शरीफ में कहा वो काफिर है जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा गीता जी ज्यों की तो प्रमाण देती है। दूसरे अध्याय का 37 और 38 नीचे देखिए, 37, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और देखो 38 में, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तेरे को पाप नहीं लगेंगे। अच्छा, ये तो उसकी अपनी अटकल, ये तो काल का अपना आदेश, और बाकी जो पूर्ण परमात्मा और है वो वास्तव में परमेश्वर है जिसको जड़ रूपी भगवान है, उसकी पूजा से तेरी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा, और नीचे की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की तो मूर्ख लोग करते। ये ज्ञान तो सही दिया, लेकिन समाधान और युद्ध करवाने के लिए आदेश जो अपने लेवल के दिए थे, जो संविधान में नहीं थे, क्योंकि संविधान उस परम पिता का बनाया हुआ है, और आदेश ये जो युद्ध कर ले, ये आदेश काल का अपना था। जैसे आपको बताया था कि कुरान शरीफ में जो उस परम पिता का ज्ञान है, जिसने 6 दिनों में सृष्टि रखी और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने जो कहना सुनना था, जो बनाना था, आदेश दे दिया, किसी को मांस खाने का आदेश परम पिता का नहीं है। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के अंदर देखिएगा कि प्रभु ने अपने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, और ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं, और मांस मूस खाने का कोई आदेश नहीं। उसके बाद कोई आदेश है इन पृष्ठ पृष्ठा का या किसी निराकार अल्लाह ब्रह्म का, तो वो गलत है, उसको नहीं मानेंगे हम, उसके मानने से हानि होगी। जैसे ऐसे ही गीता जी में जो पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान, वो सही है कि वो परमात्मा है, वो भक्ति देगा, वो मुक्ति देगा, वो कभी नहीं मर सकता, वो अविनाशी है, उसका नाम कबीर है, ये तो सही कहा। लेकिन जहां तक अपना आदेश बताया कि तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो यूं कर दे, वो इसने गलत कर दिया। ये इसका आदेश था अपना, इसके मानने से रावण को, अर्जुन को हानि हुई। ऐसे ही उन फरिश्तों की और देवताओं की और इन ऋषियों की जो अपने आदेश है पुराणों में, इनको मानने से हमें हानि होगी। हमने गीता जी के आदेश को सुप्रीम मानना होगा। ये ऊपर उस परम पिता का दिया हुआ संदेश इस काल के अंदर है, और काल ने फिर प्रवेश करके इसको दिया कृष्ण को, श्री कृष्ण में प्रवेश करके जो आम को दिया। जैसे एक थानेदार दरोगा का दोस्त था एक व्यक्ति, उसने अपने दोस्त दरोगा से यानी एसएचओ से कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा, मुझे बता के एक रूम तंग आ गया, बहुत कुछ कह दिया, हाथ भी जोड़ दिया, प्रमाण नहीं रहा। दरोगा जी ने कहा कि मार उसके लट सिर में, माफ देख लूंगा। अब उस एसएचओ के कहते हैं, उसके एसएचओ के आदेश से उसने जाकर अपने पड़ोसी के लठ मारा, मरते मर गया, मृत्यु होगी। اب وہی تھانے دار وہی ایس ایچ او اس اپنے دوست نے ہتھکڑی لگا کے لایا اور اندر کر دیا اور پھانسی کی سزا ہوگی. اب دیکھو وہ آدیش ایک ویکتی وشیش کا تھا کہ مار لٹ معاف دیکھ لوں گا. اور سمیدان راجا کا بنایا ہوا تھا, اس سپریم پاور کا, وہ اس کے ورد تھا, تو اس لیے اس کو ہانی ہوئی اس ویکتی وشیش کی آرڈر روبے کرن پہ اس کا آگیا کا پالن کرن سے جو سمیدان سے نارا تھا. ایسے ہی جو سمیدان میں لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے. جو پویتر بائبل میں چھ دن اسٹی رچ کا پرماتما ساتویں دن جا بیٹھا, اس نے جو بنانا تھا سمیدان وہ بنا کر چلا گیا. اور اس کے بعد ان دیوتاؤں نے, فرشتہ نے, یہ بہرو کیسے نہ ان میں پڑھ کر ان پتر بھوتوں نے, فرشتوں نے, یہ سارے سمیدان توڑوا دیے. اس لیے دوشی ہو گیا سارا سماج, چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان سکھ یا عیسائی. یہ ہم نے نہیں ماننا اس کو. پھر ہم اسی پرماتما کے اس سمیدان کو پھر اپنائیں گے تو ہم نردوش ہو جائیں گے. تو کہنے کا بھاؤ ہے داس کا کہ یہاں پر کہا کہ ارجن تیرے دونوں ہاتھوں میں لڈو تو یدھ کر لے, معاف دیکھ لوں گا, من تو مار رکھے, تو نمت نمت ہے, تو چنتا نہ کرے. اب راون نہیں ماننا نا ارجن, اس کال میں جو شری کرشن میں بول رہا تھا, ڈرا کے دھمکا کے ایسی بری بھانک شکل دکھا کے اپنا وہ کام الو سیدھا کروا دیا. ایک کروڑوں ویکتوں کا انرتھ وہ یدھ کروا دیا. اور ڈرتا شری کرشن جیسے حضرت محمد کو فرشتہ نے ڈرا دیا, وہ ڈرتا بیچارہ کر ان کی باتوں کو ماننے میں کیا. ایسے ہی ارجن اس کال کے ڈرتے سے بھینکر روپ دیکھ کر گھر میں جائے کے دس اور گیارہ سلوک میں ارجن دیکھ لے میں کال ہوں سب نہ کھاؤں گا. اب اپنا روپ دکھا کے ارجن جیسے یودھا کو بھیبیت کر دیا, اس کا کلزہ دڑ کے اور ڈرک کے ہاتھ جڑ دی, کہنے لگے میں بن جو تم کہو گے ایسے کر دوں گا. اب کیا ہوا کہ یودھ میں پانڈو وجئی ہوئے, کوروں کی ہار ہوگی, وناش کو پراپت ہوئے, یدھیشٹھر کو راج گدی پر بٹھا دیا, بھگوان شری کرشن دوارکا سے لے گئی. کچھ دنوں کے بعد یدھیشٹھر کو بھینکر سوپن آنے لگے, اور ایسے بھینکر سوپن آؤ جیسے کروڑوں بہن اپنی چوڑیاں پھوڑ رہی ہیں, اپنی مانگ وہ صاف کر رہی ہیں, ہاہاکار مچا کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہوں کہ راکشس راجا تجھے کیا مل گیا, ہمارے پتیوں کا خون پی کے ایک بھائی بٹواری کی لڑائی پہ وناش کروا دیا تم نے. مانو کروڑوں بچے اپنی ماں سے چپٹ چپٹ کر لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں, ماں ہمارا پاپا کا ہے, ہمارا پتا جی کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ابھی چھٹی نہیں آیا, وہ ملٹری میں بھرتی ہے, کچھ دن آ جائے گا بیٹا, چنتا نہ کرو. آپ پھر ایکانت سان پر جا کر رو رو کر ٹکر مار رہی ہے. اور ادھر سے جیسے سر کٹے ہوئے اور دھڑ ایسے ہمارے گھر میں گھس رہے ہوں, ایسے یدھیشٹھر کو دکھائی دے رہے سوپن میں. بھیبیت ہو کر بیٹھ جاتا ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا چاروں طرف اوپر کو باہر کو. تیسرا دن ہو گیا تو دروپتی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چنتا ہے, آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کہتا سو جاؤ, کوئی چنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ مہان آتما تھی, اپنے دکھ کو آپ ہی جھیلنا چاہتے تھے کہ دوسروں کو بھی کیوں بتایا, ان کی بھی آتما دکھ پاوے گی. چوتھے دن دروپتی نے پانڈو سے بتا دیا, وہ دوسرے پانڈو سے, ارجن آدی سے, کہ آپ کے بھیا پر کوئی آپتی ہے اور یہ بتانا نہیں چاہتے. اگر ایسے ہی کرتے رہے, نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ رات کو سو رہے, یہ تو چند دنوں کے مہمان ان کی مرتیو ہو جائے گی. چاروں پانڈو نے بھیم ارجن آدی نے جا کر کہا, بھیا کیا بات ہے, آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے, کوئی ایسا سنکٹ ہے تو ہمیں بتائیے, کوئی راج کاج میں دقت, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تبھی دشٹ نے ساری کہانی بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہ سوپن دکھائی دیتے ہیں. اب بھگوان شری کرشن پانڈووں کے اور یادوں کے گرو تھے, دھارمک گرو. جب کوئی سنکٹ آتا ہے تو گرودیو کو یاد کیا جاتا ہے. پانچوں کے پانچوں پانڈو رتھ لے کر کے کہاں پہنچے, دوارکا میں, بھگوان شری کرشن اپنے گرودیو کے پاس. ان سے بتا کہ بھگوان ایسے ایسے بھیا کو کوئی یہ سوپن دکھائی دیتے ہیں, اس کا کارن تھا سمادھان بتائیے پربھو. بھگوان شری کرشن نے کہا کہ دیکھو تم نے تو یدھ میں پاپ کیے, بندو گات کیا, دادا نے کتنے انرتھ کر ڈالا, وہ پاپ وہ دکھ رہا تمہارے کو, اور اس کے لیے ایسا کرو ایک اشومیگ یگ کرو. اشومیگ یگ میں ایک سنکھ رکھا جائے الگ سے سوستی سکیج پہ, الگ سے پانچ مکھ کا پنچانن پنچائن, ایک مکھ الگ سے سکیج بنا کے وہ سنکھ رکھنا, اور سب پرتھوی کے سب پرانیوں کو, سب مہاپرشوں کو, بھگتوں کو, سنتوں کو, دیو لوگوں کو بھی آمنترت کر دینا. اور جب سب بھوجن کھا لیں گے نا تو سمجھنا وہ یگ, اگر سنکھ بچ گیا اب پہ آواز کرے گا, وہ کسی آواز مکھ سے نہیں کی جائے گی, اب پہ کرے گا آواز, وہ اپنے آپ وہیں سے तो वो आवाज कर देगा तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, तुम्हारे पाप कट गए, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन के इस बात का बड़ी ठेस लगी कि भगवान युद्ध के दौरान जब गीता का ज्ञान दे रहा था तब तो कह रहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगे, अब कह रहे हैं तुम्हें पाप लग गए क्योंकि तुमने युद्ध किया। अब इस बात को सब्र कर लिया, छाती में मुक्का मारा, सीने में अपने आप सब्र कर लिया कि अगर अब मैं भगवान श्री कृष्ण को टोका टाकी कर दूंगा कि आप क्या कह रहे थे गीता का ज्ञान देते समय, अब उसमें कह रहे थे कि तुझे पाप नहीं लगेगा, पर चुप हो गए, मन मन में रख गए कि यदि अब मैं टोकूंगा, अगर मैं टोका टाकी कर दूंगा तो भाई युधिष्ठिर सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपया लगना है मेरे इस समाधान में यज्ञ में, और ये भाई ये पैसे लगाकर प्रसन्न नहीं है और मेरा ये कल्याण नहीं चाहते, और ये ऐसी नर्म आत्मा है, एक बार इसके मन में ठेस लग गई तो ये मर सकता है पर यज्ञ नहीं करवाओगा। तो इस बात को सोच के अर्जुन चुप रहा और कहने लगा भगवान जो आपकी आज्ञा वही करेंगे। सोचा फिर कभी पूछूंगा, कभी बात चलेगी तय, अब उस दिन क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे भगवान आप। अब वो समय और स्थान, क्योंकि गुरु के बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है से पूछो वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे तो श्री कृष्ण भी पहुंच गए उस निश्चित तिथि को और उस स्थान पर यज्ञ प्रारंभ होगी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9,84 सिद्ध और वशिष्ठ मुनि जैसी तोप, ये सारे बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन पा लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में कहते हैं आकर भोजन पा गए, लेकिन वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए, कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु हम बहुत पाप कर रखा है, हमारा शंख नहीं बजेगा। मुझे याद आ रही वो हाहाकार मची हुई थी, किस कारण से, किस लिए किया हमने ये जुल्म, और देखो हमारा शंख नहीं बजे, हमारे पाप नहीं कट सकते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस शंख को बजाने वाला अभी इस सभा में आया ही नहीं है। अब श्री कृष्ण जी ने भोजन पा लिया, सबने खाना खा लिया, युधिष्ठिर के मन में यह बड़ी चिंता का विषय बना, वैसे इसे ऐसे महापुरुष बैठे, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तो गोरखनाथ जैसे महापुरुष, और इनसे भी शंख नहीं बज रहा, भगवान श्री कृष्ण भी भोजन पा चुके हैं तो फिर और कौन रहा शंख बजाने वाला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम के एक सुपच इस तरह इसी दिशा में रहते हैं, वो क्यों नहीं आमंत्रित किया आपने। युधिष्ठिर ने कहा कि आमंत्रित तो किए होंगे प्रभु, हमने भीम की ड्यूटी लाई थी साइड में आमंत्रण पत्र देने की, भीम से पूछते हैं क्या बात रही, वो पहुंचे नहीं उनके या उनको मिले नहीं, क्या कारण रहा। भीम को बुलाया, भीम से पूछा कि आपने ऐसे ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कोई सुदर्शन नाम के एक महापुरुष है ऐसे ऐसे वहां रहते हैं, वो स्थान बताया, वो उसको आमंत्रित किया या भूल गए। भीम कहने लगे आमंत्रित तो किया था मैंने, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो तो ठीक नहीं बात करता, बहुत कुबोल है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे क्या क्या कह दिया ऐसा भी उसने, हमें बताना चाहिए था आपने आकर के, उसका कोई समाधान ढूंढते, ऐसे थोड़ा ही अपने आप फैसले करते। क्या बोले वो, जब भीम बताते हैं कि मैं उनके पास गया और कहा ऋषिवर मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं, हमने एक असल में यज्ञ करने जा रहे हैं और आपको मैं आमंत्रित करने आया हूं, आप कृपा से आदर वहां पधारिएगा। तो क्या बोले वो, कहने लगे भीम तुमसे तो कसाई भी अच्छे, तुमने तो ऐसा विनाश कर दिया, ना जाने कितनी बहन विधवा होगी, ना जाने कितने बालक अनाथ होंगे, उन बहनों की आंसू नहीं सूख रही हैं, वो बच्चे रो रो कर अपनी मां से पूछ रहे हमारे पिता कहां गए, वो बेकार ही है बेटा, आने ही वाले हैं, अभी छुट्टी नहीं मिली, और ऐसे कह करके फिर रो रो कर टक्कर मार रहे हैं, कोनों में बैठ बैठ के मकान के रो रहे हैं, और तुम मौज मार रहे हो, तुम्हें तो नरक में ठोका जाएगा, तुम्हारे लिए नरक भी नारा बनेगा, और तुम्हारा जो अन्न खा लेगा वो भी सीधा नरक जाएगा। अगर मुझे अब वहां बुलाना है ना आपके यहां, तो 100 अश्वमेघ ऐसे तुमने पहले कर रखे हो, तो मुझे संकल्प करो वो अपन, और फिर मैं तुम्हारे यहां का आहार करूं, मैंने नरक में नहीं जाना। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी मोटे दिमाग का है कि कुछ ठीक बोला होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आपने क्या उत्तर दिया उस महापुरुष की बात का। भीम कहने लगा मैंने आपका डरना होता भगवान भाई का तो उसका दो दड़ाक डरता, उसने कूट कहाता भाई ऐसा गलत बोला वो। तो श्री कृष्ण कहने लगे भीम यात्री महान गलती है, संत के प्रति तने विचार भी गलत कर लिया ना तो भी पाप का भागी हो गया। अब देखो इसमें कोई राज होता है जो उन्होंने बात कही, कोई दुश्मन ना तेरा उसने कुछ जो बात कही उसका कोई रहस्य होता संत के वचन में और तूने मेरे को बताना था करके ताकि कुछ समाधान ढूंढते सारा काम बिगाड़ दिया। अब देखिए आपने वो के सुदर्शन दिखाई दे एक सुपच यानी एक वाल्मीकि दिखाई देता है चूड़ा, उसके एक बाल के समान बिना तीन लोक नहीं है, ये इतना सब्र शक्ति का संत है वो। अब इस बात को अब कहते ना मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहने लगे चलो मेरे साथ बैठ के और पैर पकड़ो उस परम पिता उस परम संत के। अब पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान लेकर रथ चल पड़े, 1 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया। श्री कृष्ण जी ने कि यहां बैठ रथ यहीं रोक दो और नंगे पैरा चलो वहां पर अंडी पार्क करने जाना। पांचों छठे भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव नंगे पैरा श्री उस परम पिता के उपासक सुदर्शन की झोंपड़ी की तरफ प्रस्थान किया। उससे पहले सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि इनका काम तो ये बने नहीं क्योंकि पाप गणा कर रखा, इनका संग तो बजना नहीं, ये फिर शर्मा दर्द करेंगे आओगे मेरे पास अब चलियो हमारी यज्ञ में। ये सोचकर सुदर्शन जी उस परम पिता कबीर साहब की प्रेरणा से और उस कुटिया ने छोड़कर चला गया 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर के बाहर घूमाते इतने इनका हुआ लेगा कार्य सारा। अब सुदर्शन को चला गया वो परम पिता अपने प्यारे भगत की इज्जत रखने खातिर उसी सुदर्शन का रूप बनाकर उसकी झोपड़ी में विराजमान हो गए। और जब ही पांचों पांडव वहां पहुंचे श्री कृष्ण ने देखे वो परम पिता की झलक उसके अंदर एकदम दंडवत प्रणाम किया। फिर पांचों पांडव ने भी दंडवत प्रणाम किया। अब ये भी एक राहत देने का एक कारण होता है कि जब तक वो ऐसे लंबे नहीं होते यानी दंडवत करने का मतलब अहंकार रहित हो जाना और जब तक अहंकार नहीं होते तो परम पिता मदद कर नहीं सकता, इसलिए उनको सीधा करने के लिए भी परमेश्वर ने ये एक लीला की थी। अब वो पांचों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुणी भगवान उनमें तैन है ही नहीं। छठों ने जब दंडवत प्रणाम किया तो एक सुदर्शन रूप में बैठे वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष अकाल मूर्त खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ मुझ तुझ जीव को प्रणाम करके क्यों पाप के भागी बनाते हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे हे सृजनहार आपकी महिमा आप पर जानो, हम आपके पास एक संदेश आपका प्रार्थना करने आए हैं। ये दिल्ली के बादशाह युधिष्ठिर जी हैं और ये इसके भाई हैं, आपको अपने यज्ञ में आमंत्रित करने आए हैं। भगवान परम पिता ने कहा सुदर्शन रूप में कि देखो मैंने इस भीम से कहा था वो मेरी शर्त पूरी करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो तो मैं वहां आपके आहार करूं नहीं तो नहीं करूं। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे परमेश्वर आप ही की वाणी है, चारों युगों में आते हो आप चारों युगों में वाणी लिखते हो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। आपकी वाणी है परमात्मा के संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जैसे सत्संग में प्राणी ने ऐसे आना चाहिए संत के द्वार पे, कैसे जैसे एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति मेडिकल में जावे ऑल इंडिया में जावे उसने उसको याद नहीं रहता तू सेठ है या तू मंत्री है या तू प्रधानमंत्री है या तू किसी भी अच्छी जो पैसे वाला है या कोई अधिकारी है उसको केवल अपनी जान दिखाई देती है। वो भूल जाता अपने एम को और डॉक्टर कहता है लेट जाइए वो लेट जाता है, कहता है पर्ची बनवा के ले वो पर्ची बनवाने चला जाता है, टेस्ट करवाइए वो टेस्ट करवा देता है, कहता है इंतजार कीजिए वो इंतजार करता है, वो कभी मन में एम नहीं लाता क्योंकि उसको याद नहीं आता है उसको अपनी जान दिखाई देती है। ऐसे ही सत्संग में जबाव प्राणी अपने आप को एक रोगी महारोगी है, हम युगों युगों के हमारे ऊपर इस जन्म मृत्यु का रोग भयंकर लगा हुआ है और इस उद्देश्य से आवा कि अपने आप सब अहम को भूल के तो उसके एक कदम का उस संत दर्शन के लिए एक कदम भी चलते हैं तो करोड़ कहते हैं 100 अश्वमेघ का यज्ञ का फल मिलता है। एक कदम का फल एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, एक कदम रखा था इस भावना से। तो क्या बताते हैं संत मिलन को चा लियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान प्रभु, इतनी दूर से चल कर आए हैं हम। और आप देख रहे पांडव, पांचों पांडव माज कति अभिमान नहीं, ये बिल्कुल रुई से भी नरम हो चुके हैं, आप अंतर्यामी हो देख सकते हो। और प्रभु सौ ये कहते हैं एक कितने जितने कदम रखे उतने यज्ञ के तुल्य हुए आपकी वाणी से, आपके दर्शनार्थ आए हैं। सौ रख लो बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा कल्याण हो। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, नसीब देकर ने चाहो थे और किसके ये संकल्प ले थे मालिक, वो तो उनको सीधा विनम्र करना चाहो थे ताकि इनको मैं लाभ देने योग बन जाऊं, जब तक अकड़ रहा प्राणी में परमात्मा निकल नहीं आता। अब पांचों हाथ जोड़े नीचे गर्दन करे खड़े, तब परमेश्वर ने कहा चलो बैठा के रथ में परमेश्वर को, और यज्ञ मंडप में पहुंचे श्री कृष्ण। अब क्या हुआ, जब यज्ञ मंडप में हुआ वो बैठे कोई करोड़ व्यक्ति, जब देखा ना कैसा है, जैसे जंगल में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी वेशभूषा परमेश्वर की ऐसी थी सुपच के रूप में, सुदर्शन के रूप में। कैसी थी, टूटे से जूते और मैले कुचेले कपड़े, दाढ़ी जैसे दस एक महीना हो गया दाढ़ी बनाए, ऐसी दाढ़ी बड़ी और ऐसे ही बाल बिखरे हुए छोटे छोटे घुंघर वाले बाल, और ऐसा जैसे जंगली व्यक्ति होता, इस वेशभूषा में परमेश्वर ने सभा में प्रवेश किया। सभी ने उन महापुरुषों ने जो ऋषि और मह ऋषि खड़े थे ऐसे अक्ष मुख करके मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं कि ये क्या लाए ढूंढ के, इससे इनका यज्ञ पूर्ण होगा क्या, क्या कहते हैं वो अपनी 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 गलती को ये नहीं मानता, नहीं कह हैं कह रहे हैं वो सारे ऋषि और मह ऋषि बैठे कहते हैं हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा है, कैसे शंख बजाय, इन्हें तो नाश विनाश कर रखा, दुनिया की हत्या कर रखी है। कहते नाचा ना जावा तांगन टेटा वो है करे ऐसी बात। अब श्री कृष्ण ने अपने हाथों आसन बिछाया परम पिता का, और द्रौपदी से कहा बहन बढ़िया भोजन बना दे, इस संत के आहार करने से तुम्हारा शंख बजेगा, ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब द्रौपदी ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। देखो वैसे तो कोई अतिथि आ जाए किसी के घर में, इन बहन बेटियों का एक विशेष उद्देश्य होता है कि आम प्रतिदिन के बनने वाले भोजन से विशेष भोजन उस दिन बनाया जाता है, ताकि ये खाने वाला बाहर जाकर यूं ना कह दे ऐसी लड़की थी उसने खाना भी ना बनाना, नमक था ना मेरे रिश्ता कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे। और वैसे ये एक औपचारिकता होती भी है आम व्यक्ति के लिए, तो द्रौपदी ने इस उद्देश्य से भी कि कहीं अब ऐसा भोजन बना दूंगी ये जंगल में घास फूस खाने वाला व्यक्ति उंगली चाटता रह जाएगा और सौ जगह गुण गाऊंगा। द्रौपदी ने भोजन बड़ा आहार बड़ा अच्छा कराया। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने दो घंटे तक लकड़ बाल का अपने हाथों भोजन बनाया, रसोई बनाई, नाना प्रकार के पकवान, पूड़ी कचौड़ी रोटी, कितना फिर खीर, कितना हलवा, कितना काजू, किसी प्रकार के नाना प्रकार की सब्जी बनाकर और एक थाली में परोस कर और परम पिता के सामने खाना रख दिया और प्रार्थना की भोजन आहार कीजिए महापुरुष। अब द्रौपदी बैठगी के देखिए खाना खाएगा और उंगली चाटेगा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उस परम पिता ने क्या सोचा, उन सारी कटोरियों में से वो निकाल कर सब्जी भी, सारी सब्जी दाल कड़ी और सब्जी भी, हलवा भी, खीर भी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, रसगुल्ले भी, और वो लड्डू भी सारे इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ने सोचा देखियो सुदर खाना भी ना खाना आता, इसने किसके शंख बजाओगा, ये मन में खोट किया। किसने, द्रौपदी ने मन में खोट किया कि ये सुदर का सुदर रहा, इसने खाना भी ना खाना आता है, काहे के शंख बजाओगा। अब ज्यों ही उस महापुरुष ने उस भोजन को जो इकट्ठा किया था ऐसे ग्रास किया, वो शंख ने आवाज की, पांच बार में वो सारा आहार कर गए, वो जितना खाना था थाली में डाला था पांच ग्रास में वो सारा खा लिया, पांच ही बार वो शंख बजा जो अपने आप रखा रखाया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु आनंद हो गए, ये तो बड़े महापुरुष लाए ढूंढ गए, ओहो शंख बज गया, शंख यज्ञ पूर्ण होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ना भाई अभी पूर्ण नहीं हुई, ये शंख तो इतना जोर से बजेगा कि स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, इतनी प्यारी प्यारी सारी पृथ्वी पे कणकण में इसकी आवाज सुनाई देगी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगी, ऐसे नहीं। अब मथे में हाथ रख कर और बैठ गया युधिष्ठिर, प्रभु अब कौन रह गया जिससे शंख बजेगा, युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर अब कोई नहीं रहा भाई, इस महापुरुष के बाल के समान भी तीन लोग नहीं है, इतनी परम शक्ति युक्त है ये के वाल्मीकि नजर आवे आपको। अपने घर में खोट है उसको ढूंढते हैं कहां कमजोरी है या गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हुई। द्रौपदी को बुलाया भगवान श्री कृष्ण ने पूछा द्रौपदी सच्ची बात बताना, जब इस महापुरुष ने आहार किया तेरे मन में क्या आया था सच्ची बताना। द्रौपदी कहने लगी भगवान क्या बताऊं, मैंने दो घंटे तो आंख फुटवाई धूमे में और इतना बढ़िया नाना प्रकार का भोजन बना ये सोच करके ये महापुरुष खावेगा रूंगड़ी चाटता रह जाओगा सब छह जगह मेरे गुण गावेगा। और जब इसने सारी कड़ी बिगाड़ दी और सारा इकट्ठा कर लिया खिचड़ी बना दी तो मेरे मन में खोट आ गया, मैंने ये सोचा ये रहा सूदर का सूदर, इसने खाना बिना खाना था किसके कहा के शंख बजेगा कहा कि ये पूर्ण करेगा ये। श्री कृष्ण कहने लगे द्रौपदी तेरी महान गलती है यार, आपने भोजन खिला दिया ऐसा नहीं किया, अपने घर में दो रोटी सब खाते हैं और ये परम पिता है ये पूर्ण परमात्मा समझो इसमें वो शक्ति है, अपने घर पर रोटी रोज सब सब खाकर सोते हैं, तेरे ऊपर से एहसान किया इसने तेरे घर पर आहार कर दिया तेरे कर्म काटने आया ये परम पिता का प्यारी यानी परम पिता ये परम हंस द्रौपदी तेने जुलम कर दिया इसके पैर धोकर पी दे तेरे भी मन में पाप आ गया, इसके पैर धोकर भी जब तेरा शंख बजा तुम्हारे पाप कटे इधर बात बिगड़ गई सारी। मरता क्या नहीं करता द्रौपदी लाई प्रांत उठा के रख कर परम पिता के धूल भरे चरणों का वो पानी और दाल कटोरे में लगी पीन आधा पी लिया, जो श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी आधा मुझे भी दे दे बहन इसे महापुरुष का चरणामृत गद गद नसीब होए। जिस परम पिता का नाम लेने से हृदय में गदगद होए और उसके चरणों का पानी परमेश्वर पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है। अब जो ही वो जल पान किया या गरीबदास जी कहते हैं वो चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करता रहा कि वो बंगी सा दिखाई देता वो परम पिता कबीर परमेश्वर सुदर्शन रूप में वहां बैठे थे, कहते उस वाल्मीकि के चरणों की धूल पी उस राम चंद्र कृष्ण चंद्र भगवान तीन लोक के नाथ ने। और जब ये उनका यज्ञ पूर्ण हुआ अब क्या होता है इतना जोर से शंख बजा पूरी पृथ्वी का ऊपर आवाज गई स्वर्ग तक उसकी आवाज की और सारी पृथ्वी पर कहते हैं ये वसंत जैसी ऋतु आ गई सब फल फलों से लदपद वृक्ष हो गए और सब फूलों से पर्वतों के ऊपर भी सब पर्वतों पर उनपे वृक्षों के फूल खिल गए और सारे फलों से लदपद हो गए जो इतनी आनंद आया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब ध्यानपूर्वक सुनना ये 20 मिनट का सत्संग और है जो कि सारा निचोड़ निकलेगा। अब क्या होता है एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया और उसमें श्रीकृष्ण की आड़ में या तो बहुत अभिमानी हो गए थे वो कहा करते थे हमारे श्रीकृष्ण के भगवान के समान कोई नहीं है, उन्होंने आम भक्त संत का अनादर करना प्रारंभ कर दिया था। दुर्वासा जी के बारे में सुना था कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं, इस बात का यानी मजाक करने के लिए उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक